Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
गुड इवनिंग.
और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं Lalima Aneja Dang.
Thanks, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 600 points. Nifty settles above 23,700. Major Asian indices end with gains. And Cabinet approves Bharat Audyogik Vikas Yojana Bhavya for developing 100 plug and play industrial parks across the country.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक के उछाल में रहा. निफ्टी 23,700 के ऊपर हुआ बंद. प्रमुख एशियाई बाजारों में भी तेजी हुई दर्ज. और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने वाली भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या को दी मंजूरी.
Well, before we move any further, here's a disclaimer for all our listener friends. Friends, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज 0.83% की बढ़त के साथ बंद हुए. टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट शेयरों में तेजी का इसमें अहम योगदान रहा. सेंसेक्स 633 अंक बढ़कर 76,704 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 197 अंकों की वृद्धि से 23,778 पर पहुंच गया. इससे पहले बाजार सकारात्मक शुरुआत के साथ खुले और कुछ उतार चढ़ाव के साथ ऊपर की ओर बढ़े और अंततः बढ़त के साथ बंद हुए. पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पिछले सप्ताह आई भारी गिरावट से उबरते हुए बाजारों ने लगातार तीसरे सत्र में लाभ दर्ज किया.
Benchmark domestic equity indices closed 0.83% up today, supported by gains in technology and realty stocks. The Sensex climbed 633 points to close at 76,704, while the Nifty jumped 197 points to settle at 23,778. Earlier, the markets opened on a positive note and moved upward with some volatility, but ultimately ended higher. Meanwhile, markets bounced back from last week's sharp correction triggered by the West Asia conflict, marking their third consecutive session of profits.
सेंसेक्स में 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल लगभग 3.4%, टेक महिंद्रा लगभग 3.3% और इन्फोसिस 2.8% से अधिक बढ़े. वहीं एनटीपीसी 1.3%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1% से अधिक और सन फार्मा लगभग 0.9% गिर गए.
Among the sectoral indices at the BSE, all sectors ended in positive territory except metal, which fell by 0.1%. Among the top gainers, focused IT surged over 2.9%, IT increased more than 2.8% and realty advanced about 2.7%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 3,202 companies advanced, 1,088 declined and 142 remained अनचेंज्ड। एंड फॉर रुपी, ओवर टू यू सोनू।
थैंक यू। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की गिरावट आई और एक डॉलर की कीमत 92.63 रुपए दर्ज हुई। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.48 पर था। सिद्धार्थ, आज बाजारों के लिए बहुत अच्छा दिन है, लगातार तीसरे सत्र हमने बढ़त देखी है और इन तीन दिनों में इस सप्ताह 3% के करीब हमने तेजी देखी है बाजारों में। क्या लगता है आपको, बाजारों का सेंटिमेंट अभी क्या है, क्या उन्हें लग रहा है कि स्थिति संभलती नजर आ रही है?
नहीं देखिए सोनू, मुझे लगता है दो तीन कारण है। एक तो जो अभी मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, जो ईरान और इजराइल और जो ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान और इजराइल और अमेरिका का, वो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब हल्का सा उसमें जो है आपको लग सकता है कि मतलब जो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो नेटो देशों से बोल रहा था कि आइए आप भी समर्थन करिए, तो कहीं उस तरह का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है उसमें। दूसरा, जो तेल की कीमतें जो एकदम से $120 पर बैरल तक गई, एक तकरीबन उसके आसपास तक, तो वो भी अब $100 पर बैरल के आसपास कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये दो प्रमुख कारण है जिनकी वजह से मुझे लगता है। और अब हालांकि जो हिंदुस्तान की बाजारों में जो FIIs हैं उनकी निकासी अभी भी जारी है, लेकिन अगर आप पिछले एक साल का भी जो पूरा लेखा जोखा अगर मार्केट्स में देखेंगे तो मतलब ज्यादातर महीनों में या टाइम में हम देखेंगे कि FIIs की सेलिंग बनी रही है। तो अब मुझे लगता है वो फैक्टर हिंदुस्तान की मार्केट में फिलहाल पिछले एक सवा साल में ये बात सिद्ध हो गई है कि उनके बिना भी भारतीय बाजारों में जो है एक स्थिरता बनी रह सकती है और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफी जो है तेजी से उनका बाजार में विश्वास और वो बाजार में पूरी तरह से बने हुए। हाँ, ये जरूर था कि जो पिछले दो सप्ताह और जो तीसरा सप्ताह ये जो लड़ाई चल रही है कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से मार्केट में असर पड़ा था। मुझे लगता है अब वो स्टेबिलिटी दोबारा जो है वापस आ रही है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट चल तो रहा है लेकिन अब वो कितने दिन और आगे चलेगा मुझे लगता है उस तरह, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन हो रहा है कि हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, हमारे जो सप्लाईज थी LPG या क्रूड ऑयल की, तो उन पे थोड़ा असर इमीडिएट पड़ा था लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार उसको जो है स्टेबलाइज करने में सफल रही है और शायद वही मार्केट्स में भी वो कॉन्फिडेंस उसी वजह से जी वो लौट रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो सोनू मैं बोलूंगा कि इस दो सप्ताह में जो अच्छी बात हुई थी कि मार्केट्स काफी गिरी थी, अच्छे जो शेयर्स थे वो भी बहुत अट्रैक्टिव भाव पे आए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो अट्रैक्टिव भाव था कहीं उसकी वजह से भी बाजार में जो है दोबारा तेजी आई है, लोग उनको जो है वैल्यू बाइंग जो है जिसको मैं कहूं तो वो भी दिख रही है।
Siddharth, our chief economic advisor V. Anant Nageshwaran told a parliamentary panel that India will continue to be the fifth largest economy in financial year 27, mainly on account of base year revision and exchange rate. And I quote unquote, he says, however, in 2027-28, we may have a chance to become the fourth largest, as much will depend on the yen exchange rate as to how we are able to overtake Japan, unquote. How do you see that, especially in the view of the current scenario?
See Lalima, as far as I think that's a statistical number, it goes without saying that the day is not far off that when India would be the fourth largest economy, the fifth largest economy currently we are. So I don't think that's a very something which, but the strength in the Indian economy, the fundamentals of the Indian economy, the if you look at last 2 years, we've been growing 7% plus. It is expected that we should be, if everything goes well, I hope this crisis which is there subsides and we begin April on a very positive note. So I don't see that impact on the growth numbers which we have projected for this year, that we should be close to 7.5% for the next financial year. Mm-hmm. So if I could also draw your attention to what the finance minister said yesterday in parliament, that obviously what the steps mm-hmm. taken by the government, especially for the energy security in last 10 years yes. and to keep the economy stable. If you look at the record of the Narendra Modi government, especially in terms of growth, in terms of inflation, it has been, I think you have to rate them at, it is outstanding record. So The only impact which I see in immediate on the Indian economy because of the crisis Middle East, obviously it could have some inflationary pressures on us, because obviously we are net importers of crude oil, very high percentage of almost 90% we import. Mm-hmm. So that could obviously, the prices have surged, so that could have some impact on the Indian economy. But in the long term, I do not see much impact in terms of our, because the fundamentals of the Indian economy are growth trajectory. So everything is in the positive zone.
तो सिद्धार्थ, जैसा हम जानते हैं कि कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कोविड पैंडेमिक था, या अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इस तनाव की वजह से, मिडल ईस्ट तनाव की वजह से हमारे लिए जो सप्लाई चेन बाधित हुए, हालांकि अब जैसा आप कह रहे हैं उस समय वो स्थिति संभलती नजर आ रही है. उस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने मेंशन किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कल कहा, उन्होंने जो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड की बात की 57,000 करोड़ के, ऐसी ही स्थितियों पर उनसे जूझने के लिए, ये भी बहुत विश्वास जगाता है.
नहीं, आपने बहुत अहम बात उठाई सोनू, क्योंकि जो मैं मतलब आपको ये बोलूं कि पहली बार मैं भी सुन रहा हूं कि जब ऐसी कोई क्राइसिस आई है तो सरकार ने एकदम तुरंत जो है इस तरह का कोई इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो फंड बना लिया, किसी भी इमरजेंसी जो कहीं न कहीं जो हमको वैश्विक तौर पे कहीं ना कहीं जो चुनौतियां एकदम से आती हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही हैं, या जो मिडल ईस्ट की ये जो कॉन्फ्लिक्ट आई है जिसकी वजह से हमारी तेल और गैस की आपूर्ति पे जो है कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, तो वो जो डिसरप्शन आ रहा है, तो और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक अंदेशा ये भी है कि शायद फर्टिलाइजर, क्योंकि वहां पे भी हम बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करते हैं, और फर्टिलाइजर हमारे लिए, आपको ये कहने वाली बात नहीं है कि वो हमारे लिए इसलिए भी है, मैं क्योंकि हमारा हम एक कृषि प्रधान देश हैं, और हमारा जो है एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हमको स्टेबिलिटी हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रदान करता है, क्योंकि 140 करोड़ तो जो हमारा जनसंख्या है उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से हिंदुस्तान पूरी तरह से वीट हो चाहे राइस हो जो वो है पूरी, और एक बड़ी पॉपुलेशन को हम फ्री फूड की भी जो है सरकार जी देती है. तो वहां पे जो ये जो फंड है ये ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए तकरीबन 1,00,000 करोड़ का जो फंड है जो उन्होंने अनाउंस किया, और ऑलरेडी इसमें तकरीबन 60,000 करोड़ का प्रोविजन कर भी दिया गया है. तो ऐसी जो चुनौतियां आएंगी, जो भी कोई कहीं पे ऐसी स्थिति उभरेगी जहां कि उसको सपोर्ट करने की जरूरत हो, चाहे क्रूड ऑयल का हो, चाहे गैस एलपीजी हो, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है.
सिद्धार्थ, व्हेन यू टॉक अबाउट गैस एंड ऑयल, दैट्स काइंड ऑफ मोर डिस्कस, बट व्हाट इज नॉट डिस्कस मच बट यू मेंशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्टिलाइजर, बिकॉज आवर कंट्री इज लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड. इंडियाज फर्टिलाइजर डिमांड विंडो इज फास्ट अप्रोचिंग लेट मार्च थ्रू अप्रैल, एंड द पीक फॉस्फेट प्रोडक्शन सीजन बिगिन्स इन जून. नाउ वी हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड बहरेन, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया, व्हिच आर क्रिटिकल एक्सपोर्टर्स ऑफ यूरिया and DAP and anhydrous ammonia. So where does this leave the government for a, is it too big a challenge for the government, or it's fine, we'll overcome?
No, taking a cue from what Sonu said about the economic stabilization fund, mm-hmm. or we can also say a fund for any emergencies like this. So in as far as fertilizer is concerned, we have enough supplies for the kharif season. We are covered for kharif. So we need not worry. Now what we have done, we have already provided in the supplementary demand for grant, which has been just been cleared by the parliament, we have provided the fertilizer ministry with 19,000 crores of extra money to go and procure supplies for the rabi season. So immediately we have no shortage of fertilizer. So this is something which our viewers and anybody who has interest in economy should be very well, should take cue from, or should take, and this gives us that kind of confidence. There is nothing to worry in terms of our supplies for of fertilizer. Correct. And for the kharif season we are covered, and we are already now working how to procure supplies for rabi season. Plus, Lalima, I don't think this conflict we should hope that it ends soon.
I don't think
it should continue that long.
और सिद्धार्थ जी, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ब्रीफली, आईटी सेक्टर पिछले 6 सत्रों से उसमें गिरावट थी, लेकिन आज हमने उसमें खासी बढ़त देखी है. आपको लगता है कि अब सारे सेक्टर्स जो हैं उनमें सेंटिमेंट पॉजिटिव है, या कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा अनसर्टनटी या उनपे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा इस तनाव का?
सोनू देखिए, एक तो बड़ी सीधी सी जी बात है कि जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेक्टर है या एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं उन पे एक, क्योंकि एक आप ये देखेंगे पिछले एक साल में सवा साल में, जब से, अगर मैं ये कहूं जब से ट्रंप साहब आए हैं, तब से एक्सपोर्टर्स एक ऐसा या एक्सपोर्ट आधारित कंपनियां उन पे जिस तरह का अनिश्चितता आई है, कभी उनकी 26% की टैरिफ की धमकी, कभी 50% फिर टैरिफ लगा दिया, अभी भी हमारे ऊपर 10% की टैरिफ लगी हुई है, साथ साथ उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की एक और हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। तो एक्सपोर्टर्स ने जो भी अभी तक जितना ब्रंट फेस, तो वो एक सेक्टर हो सकता है, बट अदरवाइज आपने जो आईटी की बात की, आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी काफी पिटाई हुई है, लेकिन मुझे लगता है अब आईटी क्षेत्र में भी जो कंपनियां और खासकर जो हिंदुस्तान की अग्रणी कंपनी है, और आईटी में आप देखेंगे हमारी कंपनियां दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं। और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो किस तरह का रूप लेती है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनियों में निवेश करें, थोड़ा लॉन्ग टर्म करें और थोड़ा थोड़ा करें।
The positive thing is that, ironically, Siddharth, that the exports to the US have increased over the last few months despite the tariffs and all that. Yes, sir.
और आज जैसा हमने प्रदर्शन भारत के बाजार में देखा, वही एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी दिखाई दिया। एशियाई बाजारों में अधिकांश शेयर सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 5% से अधिक के उछाल में रहा। जापान का निकेई 225 सूचकांक लगभग 2.9% बढ़ा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.3% से अधिक की वृद्धि में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.6% बढ़ा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% की बढ़त पे रहा। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक भी आज उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 40 सूचकांक 0.9% से अधिक का बढ़ गया था। जर्मनी का डैक्स लगभग 0.7% ऊपर था और लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.3% की तेजी पर था।
A look at the US markets now. Wall Street continued its gains from the previous session and closed higher yesterday, helped by airline and travel stocks. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose nearly 0.5%, the S&P 500 advanced over 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average eked out a gain of 0.1%. Meanwhile, the Federal Reserve began its two-day policy meeting amid investors' worries about high oil prices and the West Asia conflict. Siddharth, two questions. A, how does the war affect the United States? Is it immune to it because it started it all? Because there's going to be effect on inflation, not just the world, but US can't remain untouched, number one. And secondly, what do you expect of the Federal Reserve meeting, the rates, which way the rates would go? Your comments.
See, Lalima, I think given the way Fed has acted till now, I think Jerome Powell, obviously he's close to his tenure now. Mm-hmm. So I think, and given this heightened uncertainty, and as you also said, that they cannot remain immune to the impact of war on US, obviously, because there is always a cost to any war. Mm. Plus the disruption which is happening in terms of supply chains would also impact the United States. And I think today, what later in the night, what I expect in the United States in terms of from the Fed is that they would be striking a very cautious note, obviously, because there is uncertainty, and they would obviously wait and watch. And also a lot will also depend on the inflation data, which is also expected tonight, and also the industrial production data. But I do not see them going for a rate cut at this juncture.
सिद्धार्थ जी, इसका दूसरा पहलू, अगर हम ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक को देखें तो कल ही उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन का हवाला देकर। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक या बाकी सेंट्रल बैंक्स भी इन्फ्लेशन को एक्चुअली रिवर्स द साइकिल और उसको बढ़ाना शुरू कर दें?
नहीं, अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी लड़ाई केवल 2 हफ्ते हुए थे, आज ये तीसरे हफ्ते में हैं हम, तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी किसी इस तरह का कोई कदम फेड उठाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड थी कि इस साल में 2 रेट कट्स और कम से कम आएंगे, तो वो मुझे लगता है वो जो एक उम्मीद बंधी हुई थी वो मुझे लगता है घटेगी, और वो एक कमेंट्री, बड़ी कॉशियस सी कमेंट्री देंगे, बिकॉज दे विल ऑल्सो से कि वो यही बोलेंगे कि थोड़ा और डेटा आएगा, किस तरह वॉर किस का क्या रुख रहता है, किस तरफ करवट लेता है, तो मुझे लगता है भविष्य की तरफ ही ज्यादा उनका जो है फोकस रहेगा।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विद एन एलोकेशन ऑफ 33,660 करोड़ रुपीज। ब्रीफिंग मीडिया न्यू दिल्ली आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड दैट द स्कीम एम्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलॉकिंग मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल एंड ड्राइविंग द कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी।
एक इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का स्कीम बनी है, जिसके तहत 100 शहरों के पास में 100 ऐसे शहर जहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनता है या बन सकता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएं। करीब भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा 1 करोड़ पर एकड़, और मिनिमम 100 एकर्स का रिक्वायरमेंट इसमें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिएगा। हालांकि इसको नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के लिए 25 एकर्स ही रखा जाएगा। 6 वर्षों का ये प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है, और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर और सेंट्रल पीएसयू के साथ मिलकर डेवलप करेंगे।
In a significant step towards strengthening farmer welfare and advancing the vision of Atmanirbhar Bharat, the Cabinet approved MSP funding of over 1,718 crore rupees to the Cotton Corporation of India for the cotton season 2023-24. The minister said that this funding aims to provide direct price support to cotton farmers across the country. Mr. Vaishnav said that the MSP operations are undertaken to safeguard the interests of cotton farmers, particularly during periods when market prices fall below the MSP. The cabinet also approved the small hydropower development scheme for the period of 2026-27 to 2030-31 with an outlay of more than 2,584 crore for the installation of small hydropower projects of an approximate capacity of 1,500 megawatt.
एक आज एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए, बिना बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट किए, एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके बिना रन ऑफ द रिवर, रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एक स्मॉल लोकल एरिया में, और कॉस्ट भी बहुत कम आती है।
Alright, Siddharth, your views on this. One thing I can say is that a lot of developed nations have got cheesed off with the big dams. So maybe we are learning some lessons from them, from their experience. But anyway, your comment on this.
See, Lalima, I think on the first, this Bharat Audyogik Vikas Yojana or Bhavya, I think it's obviously a push which this government, since it came to power 20, push on Make in India, manufacturing push, I think that's one more step in that direction. And I would say why it is very important, plug and play means just come and start your business. Just come. Every infrastructure is there. Uh-huh. You know, from talking, what I would be giving an example, even the sheds are there. Everything is there. Every infrastructure is provided for. You have to just come and start.
So and ease of doing business ka ek bahut hi high level.
Bilkul, aapne Lalima ekdam theek baat boli. Ease of doing business. Kyunki kya hota hai, aaj ki date mein agar aap koi bhi industry Hindustan mein lagane ki jab baat aa rahi hai, to kahin na kahin jo ek sabse badi समस्या आती है वो आती है कि भाई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड एक्विजिशन, वहां से हम बाकी जो सुविधाएं या जो अप्रूवल्स जो आपने बात की, तो यहां पे इसमें प्लग एंड प्ले मींस आइए, प्लग लगाइए और काम शुरू कर दीजिए। और ऐसे 100 बड़े जो इंडस्ट्रियल पार्क्स की हम बात कर रहे हैं, इससे एमएसएमई स्टार्टअप्स और जो विदेशों से जो नई कंपनियां आना चाहती हैं और अपनी औद्योगिक इकाइयां लगाना चाहती हैं, उनको एक बहुत बड़ा इससे फैसिलिटेशन मिलेगा। और तकरीबन 6 साल की 33,000 करोड़ की योजना है, तो मुझे लगता है काफी सरकार ने पैसा भी डाला। जहां तक कपास की बात है, कॉटन की जो एमएसपी का सपोर्ट है, तो इस सरकार का शुरू से रहा है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसी स्टेप में एक डायरेक्शन है। स्मॉल डैम्स क्योंकि बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो कहीं और हिंदुस्तान में स्कोप बहुत है। मतलब तकरीबन मुझे लगता है 6,000-7,000 ऐसे साइट्स हैं जहां पे आप, और अभी तकरीबन केवल 1,000 स्मॉल डैम्स के साइट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इसमें जो कैपेसिटी बिल्ड हो सकती है वो तकरीबन 21,000 मेगावाट तक अभी, और अभी आई थिंक प्रेजेंटली भी है 5,000 मेगावाट, तो स्कोप बहुत है।
Great.
चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने आश्वासन दिया है कि कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और तेल रिफाइनरीज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी साझा की। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यावसायिक एलपीजी का अतिरिक्त 10% आवंटन करने का प्रस्ताव दिया है, इस आशा के साथ कि वे दीर्घ अवधि में एलपीजी की जगह पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में समर्थन देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने प्रमुख शहरों और शहरी इलाकों में एलपीजी के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे एलपीजी की जगह पीएनजी इस्तेमाल करना शुरू करें।
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40%। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है।
तो बहुत ही आश्वस्त करने वाला ये पूरी जानकारी है सभी के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, और एक तरह से एक पुश भी है कि आप पीएनजी की तरफ जाइए।
नहीं बिल्कुल सोनू, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब जो एक शुरू में कमर्शियल सिलेंडर्स की जो सप्लाई पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था वो भी सरकार ने दोबारा उसको जो है उसकी उपलब्धता दोबारा से शुरू कर दी है, बढ़ा दी है बल्कि। और जो बात आपने कही पीएनजी की, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास नेचुरल गैस का खुद वो है तो इसलिए वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि एलपीजी को एक तो भंडारण उसका करना, उसको लाना, और कम से कम 60% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, 60-65%, तो वो एक थोड़ा सा वो एक इतना आसान काम नहीं, और शायद वो 3 हफ्ते से ज्यादा हम उसको स्टोर का वो जो पूरा वो चेन है वो उससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर पाते। और एलपीजी के हमारे पास कस्टमर्स भी, मतलब जो उपभोक्ता है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 33 करोड़, और पीएनजी तकरीबन 1.5 करोड़ उपभोक्ता ही है, तो इसीलिए शायद सरकार का है कि जो
तो
हमारे पास
ये अपॉर्चुनिटीज एडवर्सिटी में हो।
हाँ, मतलब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर।
जी राइट राइट और राइट। वेल, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज रिमेन्ड मिक्स्ड टुडे आफ्टर इराक रिज्यूम्ड क्रूड एक्सपोर्ट्स वाया पाइपलाइन टू टर्कीज मेडिटेरेनियन port of Kehan, raising hopes of some relief. However, with no signs of de-escalation in the U.S.-Iran conflict, Brent crude was trading 0.6% higher at $104 and 1 cent per barrel, while West Texas intermediate crude was trading 1.4% lower at $94 and 90 cents per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 1% down at 1,55,380 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% lower at 2,52,290 rupees per kilogram a short while ago.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.6% की गिरावट से 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और मई अनुबंध वाली चांदी 0.3% गिरकर 2,52,343 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। सो नॉर्मली वन वुड एक्सपेक्ट कि प्राइसेस एकदम बढ़ेंगी जब ऐसा युद्ध हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरियन है।
हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनू, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड ऑलरेडी एक तो एलिवेटेड लेवल्स पे था, फिर मुझे लगता है कुछ लोग अपनी पोजीशंस भी इस समय वो करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक दो कारण है, और उसके साथ साथ क्रूड ने जो है क्रूड में तेजी हमने देखी तो ये एक तीसरी बात होगी, तो इसलिए मुझे लगता है। और गोल्ड प्राइजेस इस समय रेंज बाउंड है, बिकॉज आई थिंक जो ध्यान है सारी दुनिया का वो है क्रूड ऑयल और गैस पे, और साथ साथ जो गोल्ड की प्राइसेस ऑलरेडी काफी एलिवेटेड हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इस समय वो रेंज बाउंड ही है।
घड़ी की सुइयां हमें अनुरोध कर रही हैं कि हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी दी।
आप दोनों का भी धन्यवाद।
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 600 points. Nifty settles above 23,700. Major Asian indices end with gains. And cabinet approves Bharat औद्योगिक विकास योजना भव्य फॉर डेवलपिंग 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस द कंट्री. एंड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. सो इट्स बाय फ्रॉम मी लालिमा अनेजा डैंग, माइक्रो एंकर सोनू सूद एंड आवर एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिंह. नमस्कार.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.